इप्सिता की माँ ने नंदिनी और इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, इप्सिता, अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाओ, यहाँ बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं, आप लोग अपने कमरे में आराम से बैठकर बातें करिएगा। और हाँ नंदिनी बेटा, अपनी दोस्त को अपनी तरह थोड़ा मेकअप करना सिखा देना, उसकी शादी के बाद काम आएगा। नंदिनी ने ये बात सुनते ही मन ही मन कहा, क्या इप्सिता की माँ मुझे ताना मार रही हैं मेरे फुल मेकअप को देखकर? हो भी सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मैं तो हमेशा ही ऐसे मेकअप करती हूँ, मुझे मेकअप करना इतना पसंद है। कोई बात नहीं, अभी उन्हें भी ये बात पता चल जाएगी, नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए आंटी, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो इशू के मेकअप से लेकर उसे पूरा तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी है। सुहासिनी जी ने ये बात सुनते ही अपना हाथ दिखाकर नंदिनी को चुप कराते हुए कहा, नहीं, वो आपका काम नहीं है बेटा, उसके लिए हम मेकअप आर्टिस्ट बुला देंगे। नंदिनी ने सुहासिनी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे आंटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरे कोर्स का फाइनल ईयर है, उसके बाद मैं भी एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही बनने वाली हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई मेकअप आर्टिस्ट बुलाने की। इतना बोलकर नंदिनी सुहासिनी जी की बात सुनने के लिए नहीं रुकी और इप्सिता का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। सुहासिनी जी ने नंदिनी की ओर देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहा, बड़ी ही मुँहफट है इप्सिता की दोस्त, अभी तो हमें बाकी तैयारियों पर ध्यान देना है। इतना बोलकर सुहासिनी जी बाकी कामों में लग गईं। वहीं दूसरी ओर उदयवीर कार में बैठा था और उसने मन ही मन कहा, मुझे इशु की दोस्त काफ़ी क्यूट लगी, इशु ने हमें आज से पहले कभी उसके बारे में क्यों नहीं बताया, उसकी आंखें कितनी प्यारी थीं, लेकिन उसने मुझे भैया क्यों कहा, हम उसके भैया तो हैं भी नहीं, हम तो सिर्फ इशु के भैया हैं। उदय नंदिनी के चेहरे के हर एक फीचर के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था, तभी उदय ने धीमी आवाज में कहा, हम उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमारी मीटिंग है अभी, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजवंश महल में रात के समय डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर मोहिनी राजवंशी बैठी थी, उनके बगल वाली चेयर पर अभिमन्यु और दूसरी ओर नरेंद्र बैठे थे, नरेंद्र के बगल में उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां बैठी थीं। मोहिनी जी ने डाइनिंग टेबल पर बैठे बाकी सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, कल अभिमन्यु की सगाई के लिए हमें जल्दी महल से निकलना होगा, अर्पिता और जयराज सुबह सुबह राजमहल पहुंच जाएंगे, हम किसी से कोई गलती नहीं चाहते, नरेंद्र आपने सब कुछ देख लिया है ना? नरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ भाभी साहबा, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मोहिनी जी ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, अभिमन्यु हमने आपसे जो काम बोले थे आपने वे सारे काम कर दिए ना? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ साहबा, हमने वे सारे काम कर दिए हैं जो आपने हमसे करने के लिए कहे थे। माँ साहबा बाकी सारी तैयारियों के बारे में बात की और सब एक साथ डिनर करने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह सूर्यवंश हवेली में सगाई की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थीं। वहीं राजवंश महल में सब लोग सगाई के लिए तैयार हो रहे थे। माँ साहबा ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वे सारी तैयारियों के बारे में अपने मैनेजर से बातें कर रही थीं। तभी एक नौकर दौड़ते हुए माँ साहबा के सामने आकर रुका और उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, रानी साहबा, राजकुमारी अर्पिता और जमाई साहब महल आ चुके हैं। मोहिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अर्पिता और जमाई साहब को हमसे मिलने के लिए भेजो। वह नौकर भागता हुआ अर्पिता और जयराज के सामने आकर बोला, जमाई साहब, राजकुमारी, माँ साहबा ने आप दोनों को बुलाया है। अर्पिता ने पिंक कलर की हैवी साड़ी के साथ डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी और वो उसमें काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जयराज ने क्रीम कलर का थ्री पीस सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं थी और वो अर्पिता से काफी दूर दूर होकर चल रहा था। अर्पिता और जयराज जैसे ही माँ साहबा के सामने पहुंचे, माँ साहबा अर्पिता को देखकर खुश हो गईं और वे आगे बढ़कर अर्पिता की उलाने लगी। अर्पिता ने जल्दी से माँ साहबा को गले लगाते हुए कहा, माँ साहबा कैसी हैं आप और इतनी जल्दी भाई की सगाई? जयराज माँ साहबा के सामने आकर उनके पैर छूते हुए बोला, माँ साहबा आप हमें थोड़ा पहले अगर सगाई के बारे में बता देती तो मम्मी पापा भी सगाई में शामिल हो जाते, लेकिन उन्होंने सगाई में शामिल न होने के लिए आपसे माफी मांगी है। माँ साहबा ने जयराज की ओर देखकर नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, जमाई साहब सब कुछ काफी जल्दी हुआ है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा रिश्ता था और हम इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, वैसे भी हमें नहीं लगता सब कुछ जल्दबाजी में करने के बावजूद किसी चीज की कोई कमी है। अर्पिता ने माँ साहबा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ साहबा अभिमन्यु भाई साहब कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। माँ साहबा ने अर्पिता का गाल छूते हुए कहा, अभिमन्यु अपने कमरे में है, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। अर्पिता सीधे अभिमन्यु से मिलने के लिए उसके कमरे में गई। अभिमन्यु पर्पल कलर की शेरवानी के नीचे व्हाइट चूड़ीदार पजामा पहनकर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। अर्पिता चुपचाप अभिमन्यु के कमरे में आई और अभिमन्यु को इस तरह लैपटॉप पर काम करते देखकर अर्पिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, अभिमन्यु भाई आज आपकी एंगेजमेंट है और आज भी आप काम में बिजी हैं और अभी तक तैयार नहीं हुए? अभिमन्यु ने जैसे ही अर्पिता की आवाज़ सुनी वह अपना सिर उठाकर अर्पिता की ओर देखने लगा। उसका चेहरा जो अभी तक एक्सप्रेशनलेस था अब मुस्कुराते हुए बोला, अर्पिता। अर्पिता अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हुई और अभिमन्यु ने अर्पिता को गले लगाते हुए कहा, अभी अभी आई और आते ही हमें डांटना भी शुरू कर दिया। अर्पिता ने गुस्से से अभिमन्यु को देखते हुए कहा, आप डांट खाने वाला ही तो काम कर रहे हैं अभिमन्यु भाई साहब, जल्दी से तैयार हो जाइए, माँ साहबा ने पहले ही बोल दिया है कि वे लेट नहीं होना चाहती, हम आपको फटाफट तैयार कर देते हैं। इतना बोलकर अर्पिता ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखा और उसे कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने बिठा दिया। उसने वहीं थाल में रखे बड़े से मोतियों की एक माला उठाई और उसे अभिमन्यु को पहनाते हुए बोली, अभिमन्यु भाई साहब, आप इस सगाई से खुश तो है ना? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं अर्पिता ने अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब, आप भाभी साहबा से मिले ना, वे आपको पसंद आई? अर्पिता की बात सुनते ही अभिमन्यु की आंखों के सामने इप्सिता का चेहरा आ गया और वो इप्सिता के बारे में सोचने लगा। अर्पिता ने अभिमन्यु को इस तरह सोचते देखकर पूछा, हमें हमारा जवाब मिल गया, हमने आपको कभी भी इस तरह से किसी बात का जवाब सोचते हुए नहीं देखा, इसका मतलब हमारे भाई साहब को भाभी साहबा पसंद आ गई हैं, हम आपके लिए बहुत खुश हैं भाई साहब। अर्पिता को खुश देखकर अभिमन्यु कुछ नहीं बोला और उसने मन ही मन कहा, हम खुश होने का दिखावा करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे ऊपर पूरे राजवंशी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, हमारे लिए ये सगाई और ये शादी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अभिमन्यु ये सारी बातें सोच रहा था और तभी अर्पिता ने अभिमन्यु के बालों को अपने हाथों से ठीक करते हुए कहा, हो गए हमारे भाई साहब बिल्कुल रेडी, और आप तो सच में इतने हैंडसम लग रहे हैं कि भाभी साहबा तो बस आपको देखते ही रह जाएंगी। क्रमशः